మంగళం భగవాన్ వీరు మంగళం గౌతమో భయ మంగళం కుందకుందారు జైన్ ధర్మోత్సవ మంగళం సర్వ మంగళ్య మంగళ్యం సర్వ కళ్యాణ కారకం ప్రధానం సర్వ ధర్మానం జైనం జయతు శాసనం ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం జయంతి యోగినం తామదం మోక్షదం చేయువ ఓంకారాయ నమో నమః నమస్మై సారాయ స్వానుభూత్య చకాస్తే చిత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావం కర్షితే అజ్ఞాంత నిరాంధానాం జ్ఞానా జన్ సలాశయ చక్షుర్మూలి సమ్మేళనం తస్మై శ్రీ గురువే నమః ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాత్ అన్యత్ కరోతి కిం పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణః మంగళమయ మంగళకరం వీతరాగు విజ్ఞానం నమోతా హి జాతే భయే హరిహంతా ధీమః ఓం నమః శివేభ్య నమః శివేభ్య నమః శివేభ్య पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन दर्शन करता करवाते हुए बाबू जी सम्य दर्शन का जो विषय है यह वस्तु तत्व दर्शन का स्वरूप क्या है और किस तरह से ये जो वस्तु जो है तत्व जो है उसका दर्शन हो सकता है इनकी व्यवस्था बतलाते हुए ये बात स्पष्ट करते हैं कि अपन इस बात को अच्छी तरीके से समझे कि चार अनुयोग जो है जिनेन्द्र भगवान की जो ओम ध्वनि है जिसमें 12 अनुयोग पूर्व समाते हैं उसका तात्पर्य क्या है, विकरालता तात्पर्य है और विकरालता माने सम्यक दर्शन, विकरालता माने मोक्ष मार्ग, विकरालता माने परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति। इस चारों अनुयोग का हेतु मोक्ष मार्ग का जन्म किस तरह से हो ये बतलाने के लिए है। अब उसके अंदर में जितने भी प्रकरण है, जितनी भी नयों की चर्चा है, वो सबका हेतु शुद्ध नहीं पे ले आ रहा है। सारी की सारी बात अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग एजेंडा पे, अलग अलग विश्लेषण जो कुछ भी किया गया है उसका हेतु श्रद्धेय तत्व के ऊपर में जीव आए और मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ ऐसा विश्वास करे, ये उनका हेतु है। तो सही में देखा जाए तो ये जो सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा जो है वो एक एजेंडा नहीं है, एक जिनागम का सार है, जिनवान का सार है। एक बात जहाँ पर गुरुदेव को सबको लाना है, जिस पथ पर आकर जीव गुरु पंचमी के रास्ते पे चलकर परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है, ऐसा यह विषय सम्यक दर्शन का श्रद्धेय तत्व जो है वो यह है कि श्रद्धेय के अंदर में सचमुच मैं के अलावा कुछ नहीं होता। मैंपना जहाँ पे स्थापित किया वो ही श्रद्धा का श्रद्धेय है। अब वो गलत जगह पे हो तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है और अवित्रित जगह पे माने अपना जैसा त्रिकाल गुरु स्वभाव है वहाँ पर हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन। अभी संदर्भ में बाबू जी वस्तु तत्व दर्शन के अंतर्गत ये गुरुदेव जी ने क्या कहा ये बात बतलाते हैं। देखिए उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा मैंने ऊपर में सारी बात गुरुदेव के बारे में कही गई और गुरुदेव ने क्या कहा तो कि ये कहा कि विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ स्वयं सिद्ध अनंत शक्तिमय एवं पूर्ण है। गुरुदेव श्री ने कहा कि विश्व के सभी जल चेतन पदार्थ स्वयं सिद्ध है। एक पदार्थ को अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अनंत शक्तिमय है, हर एक पदार्थ अनंत शक्तिमय है और पूर्ण है। माने किसी को किसी की आवश्यकता, जड़ को चेतन की आवश्यकता नहीं है, चेतन को जड़ की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, लेकिन चेतन के जो दो स्वभाव जो है, यानी कि आत्मा के दो स्वभाव जो है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये दोनों ही अपने में परिपूर्ण है। इसको नई विविधता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय दोनों स्वभाव है और स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होते हैं। स्वभाव को नयो की आवश्यकता नहीं होती है, नयो से स्वभाव समझा नहीं जाता, स्वभाव से स्वभाव समझा जाता है। तो ये बात भी अत्यंत स्पष्ट है कि एक दूसरे से अत्यंत भिन्न अपनी स्वरूप सीमा में ही रहते हैं और एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं करते। जैसे जड़ चेतन का स्पर्श नहीं करता, जड़ चेतन की सीमा में नहीं जाता, चेतन जड़ की सीमा में नहीं आता और एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं करता। यही बात यथार्थ से द्रव्य पर्याय में भी लागू पड़ती है। पर्याय न तो द्रव्य में जाती है और न तो द्रव्य पर्याय में आता है, न तो पर्याय द्रव्य को स्पर्शती है और न तो द्रव्य पर्याय को स्पर्शता है। और अनुभव करते हुए, स्पर्श का अनुभव करते हुए ये अस्पर्शी है ऐसा स्वसमझन में आता है, तो बारह की कहता है कि एक दूसरे का स्पर्श ही नहीं कर, स्पर्श करके कहता है कि स्पर्श नहीं करते। ये पारा की तरह है, पारा पारा को यदि हाथ में रखा जाए और उसको पकड़ने की कोशिश की जाए तो पकड़ में नहीं आता। बस ऐसा ही है, ऐसा कहने में आता है कि द्रव्य का अनुभव पर्याय करती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पर्याय का ही अनुभव करती है। पर्याय को द्रव्य का अनुभव हो जाए तो अपरिणामी परिणाम में आवे तो अपरिणामी का अनुभव हो सकता है, लेकिन अपरिणामी परिणाम में आता ही नहीं तो अपरिणामी का अनुभव कैसे करे। लेकिन परिणाम अपने द्रव्य की रचना करके अपने द्रव्य का अनुभव करती है, एक अलग विषय है। बाद में जब विषय चलेगा तब अपन इसकी चर्चा करेंगे। अतः सभी जड़ चेतन सत्ताएं नितांत शुद्ध है। आत्मा भी एक ऐसी स्वयं सिद्ध निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य सत्ता है। श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र, आनंद आदि उसकी असाधारण शक्तियाँ अथवा स्वभाव है जो शाश्वत उसी में रहते हैं। द्रव्य स्वभाव चैतन्य सत्ता जो निरपेक्ष शुद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसके सारे के सारे गुण भी शाश्वत उसी में रहते हैं। वह अन्य परिपूर्ण एवं अन्य से अत्यंत भिन्न है। अतः वह एक शुद्ध एवं स्वतंत्र सत्ता है, क्योंकि जो सत्ता अथवा सत्ता है वह स्वतंत्र पूर्ण एवं पवित्र होना ही चाहिए, अन्यथा वह सत कैसा। सत किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो, जो पूर्ण हो, जो पवित्र हो, उसका नाम सत है। यदि द्रव्य सत है तो स्वतंत्र है, पूर्ण है और पवित्र है। पर्याय भी एक समय का स्पर्श है तो स्वतंत्र है, तत्व समय की पूर्ण योग्यता लेकर परिणमती है, उसको किसी से किसी प्रकार का आदान प्रदान होता नहीं है, उस पर्याय का कोई संप्रदान अपादान अधिकरण आदान कोई होता नहीं है, और वो पर्याय भी पवित्र है। पवित्र है मैंने उस पर्याय को अपने परिणमन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर्याय में पवित्रता शुद्धता अशुद्धता की बात नहीं है। पर्याय अपनी योग्यता से दूसरे की अपेक्षा बिना स्वतपने परिणमती है, तो पर्याय भी पूर्ण पवित्र और स्वतंत्र है, अन्यथा वह सत कैसा। दूसरी तरफ से कहते कि जो जड़ है वह पूरा जड़ हो एवं चेतन पूरा चेतन, अपूर्ण जड़ अथवा अपूर्ण चेतन का स्वरूप भी क्या हो। अतः भिन्नत्व पूर्णत्व एवं एकत्व सत का स्वरूप ही है। भिन्नत्व पूर्णत्व एवं एकत्व ये सत का स्वरूप है। विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन का यह एक मौलिक अनुसंधान है। अपने अनुसंधान में उसने कहा, यानी कि गुरुदेव ने कहा कि वस्तु का एकत्व ही उसका परम सौंदर्य है। संबंध की वार्ता भी संवाद है। वस्तु का एकत्व ही माने चेतन चेतन में बसे, यही चेतन का परम सौंदर्य है। पर चेतन का जड़ के साथ में कुछ भी संबंध से वार्ता भी संवाद है। हो नहीं सकता चेतन का जड़ के साथ में कोई संबंध। कृपालु देव ने कहा जड़ की चेतन उपजे, चेतन की जड़ खाए, एवो अनुभव कोई नहीं क्यारे कभी न। व्यवस्था नहीं है जड़ को चेतन के साथ में और चेतन को जड़ के साथ में, कोई भी आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। क्योंकि जीव यह कहता है कि कर्म के कारण मैं दुखी हूँ, कर्म के कारण मैं जगत में रुलता हूँ, तो उसे जड़ चेतन की व्यवस्था क्या है वो ही पता नहीं। उसने चेतन को जड़ मान रखा। कर्मों के कारण कोई सुखी दुखी होता ही नहीं है। और एक संयोगों की वार्ता भी नौ कर्मों के संयोगों की वार्ता है। आत्मा का कोई संयोग नहीं होता है। चेतन को जड़ का क्या संयोग हो सकता है? यदि चेतन को संयोग है तो प्रति समय उत्पाद देने वाली जो पर्याय है वह उनका संयोग है। क्योंकि गुण तो आत्मा से अभेद है और भिन्न पर्याय ये उनका संयोग आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई भी संयोग भाव उदय भाव चेतन के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखता। विश्व के प्रत्येक पदार्थ के दो अवयव है, एक उसकी अनंत शक्तिमय ध्रुव सत्ता जिसे द्रव्य कहते हैं और दूसरी उसकी प्रति समय बदलने वाली पर्याय। आत्मा पदार्थ के भी इसी प्रकार के दो अवयव है, एक इसकी श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तिमय ध्रुव शुद्ध एवं पूर्ण सत्ता एवं दूसरी उसकी श्रद्धा ज्ञान आदि पर्याय मानने जानने आदि रूप पर्याय। दरेक पदार्थ के दो अवयव होते हैं, पहले तो जल और चेतन जो पदार्थ है, फिर अब दोनों पदार्थ की स्वतंत्रता बतलाई, उसका पूर्णत्व बतलाया, उसका सत्पना बतलाया, उसकी पवित्रता बतलाई। अब वो दरेक पदार्थ जो है चाहे जल हो चाहे चेतन, उनके दो अवयव होते हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय। अब आत्म पदार्थ जो है उसके भी इसी प्रकार से दो अवयव है, एक उसकी श्रद्धा ज्ञान आदि आदि आनंद आदि अनंत शक्तिमय ध्रुव शुद्ध पूर्ण सत्ता और दूसरी जानने मानने वाली पर्याय। आत्म सत्ता का ऐसा परिशुद्ध स्वरूप स्थापित हो जाने पर आत्मा की श्रद्धा ज्ञान यानी कि जानने मानने वाली पर्याय वृत्ति का केवल एक ही क्रम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने एवं ऐसा ही अनुभव करे और अन्य सभी जल चेतन पदार्थों को अपने से भिन्न जाने। अब चेतन पदार्थ कैसा है? क्योंकि अनंत शक्तिमय ध्रुव परिपूर्ण सत्ता और दूसरी ओर उनकी जो पर्याय है श्रद्धा ज्ञान की, जिनका काम है मानना और ध्यानना, करना उसका काम नहीं है, तो करते समय की कोई चर्चा ही नहीं है और उठाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रकरण ही नहीं है। उसका काम है जानना और मानना। अब जानना और मानना की जो पर्याय है उसको क्या है जानना और मानना? तो उसका एक ही काम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने, ऐसा ही अनुभव करे। बस उसका काम इतना रह गया, जैसा अपना त्रिकाली गुरु चैतन्य सत्ता है वैसा माने, वैसा जाने, वैसा अनुभव करे। इसके अलावा पर्याय कुछ कर भी नहीं सकती। पर्याय के अंदर में दो कार्य होते हैं, चाहे तो वो ऐसा जाने और माने, चाहे तो ऐसा न जाने और न माने। जाने और माने तो उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और न जाने न माने तो उसका नाम मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान। गुरुदेव जी ने एक बार ऐसा कहा कि आज श्रीमद परमात्मा का ओम ध्वनि में ऐसा आया कि अनादि अनंत ज्ञान के अंदर में दो क्रियाएं होती है, ज्ञान का ज्ञातृत्व या ज्ञान का अज्ञातृत्व, ज्ञान मैं जायक हूँ ऐसा जाने या मैं जायक हूँ ऐसा नहीं जाने, इसके अलावा ज्ञान कुछ कर नहीं सकता। अपने आप को परमात्मा जाने या परमात्मा न जाने, बस इतना ही ज्ञान का कार्य है। जाने तो उसका नाम समय दिया और न जाने तो उसका नाम मिथ्या दिया। मैं परमात्मा हूँ ऐसा माने तो उसका नाम आत्मदर्पण समय दर्पण, और ऐसा अदर्पण ऐसा दर्पण ना करे तो जिसका नाम अदर्पण उसका नाम मिथ्या दर्पण। इसके अलावा पर्याय में कुछ हो नहीं सकता। पर्याय कितना भी विपरीत परिणमन करे लेकिन उस पर्याय में होता क्या है? यदि उसने विपरीत माना तो विपरीत हो गए, शरीर को मेरा माना तो शरीर मेरा हो गया, कर्म को मेरा माना तो कर्म मेरा हो गया, राजदेश को मेरा माना तो राजदेश मेरा हो गया। हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। बाबू जी का एक बहुत सुंदर दृष्टांत है कि 5 तोला सोना और 5 तोला पीतल, अब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों ही पीले हैं, दोनों को मिला दिया जाए और मिलाकर वजन किया जाए तो वजन कितना होगा? 10 तोला। 5 तोला सोना, 5 तोला पीतल, वजन 10 तोला। तब ये जो 10 तोला जो वजन हुआ उसमें सोना कितना पीतल? सोना 10 हो गया या पीतल 10 हो गया? अब एक जगह पे एक क्षेत्र पे आए तो दोनों एक हो गए। सोना सोना ही रहता और पीतल पीतल ही रहता है, कुछ होता ही नहीं है, आता है जाता ही नहीं। माने कुछ भी मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मानने से पर पदार्थ को पदार्थ में नहीं आता, मानने से पर्याय आत्मा में नहीं चली जाती, मानने से द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता। माने कुछ भी मानने के लिए स्वाधीन सत्य है, अपनी योग्यता से परिणमती है, उसको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। तो उसका कार्य तो है केवल उसकी वृत्ति का केवल एक ही काम रहा, एक ही काम। देखिए अब परिवर्तन वृत्ति का केवल एक ही काम रहा कि वह आत्मा को पूर्ण एवं शुद्ध ही माने, ऐसा ही जाने, ऐसा ही अनुभव करे एवं अन्य सभी जड़ चेतन पदार्थों को अपने से भिन्न जाने। किंतु आत्मा की इस वृत्ति में सदा से ही यह अज्ञान एवं अविश्वास रहा कि उसने अपने को शुद्ध एवं पूर्ण माना ही नहीं। अतएव अपनी परों की देहादी सत्ताओं में ही मुग्ध रहे, उन्हीं में अहम किया एवं उन्हीं में लीनता। पर सत्ताओं के अहम की यह व्यक्ति महान व्यभिचारिणी है, क्योंकि इसने विश्व की अनंत सत्ताओं को अपने अधिकार में लेकर उनमें रमण करने की चेष्टा है। अतः विश्व की सर्वत्र विश्व की स्वतंत्र एवं सुंदर व्यवस्थाओं को समाप्त कर देने की यह हरकत विश्व का सर्व महान अपराध हुआ और इसकी दंड व्यवस्था में निगोज फलित हुआ। सीधी सी बात है, एक और एक दो। आपने एक जड़ पदार्थ के अंदर में अहम किया तो आपका अभिप्राय एक जड़ पदार्थ में अहम नहीं है, अनंत जड़ पदार्थ का अहम है। और ये अनंतानुबंधी होने से इसका फल तो निगोद ही फलित हो सकता। और जिसने यहाँ से अपने मुंह को मोड़ा है उसका काम क्या है? अपनी गुरु चैतन्य सत्ता को ही जाने माने और इसी में ही लीन रहे। ये वस्तु तत्व दर्शन की सीधी सादी रूपरेखा है। अब आगे कहते हैं, जीव के अनादि अज्ञान का कारण व निवारण। आज तक जो घटना घटित हुई सो तो हुई, लेकिन उसका इस अज्ञान का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो। परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा एवं ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा। वस्तु परिशुद्ध कांचन तत्व है, अनादि काल के अनंत प्रयत्न के बावजूद वस्तु जो की हो रही है, अनंत काल निगोद में रहते हुए अनंत पुद्गल परावर्तन करते हुए भी वस्तु के अंदर में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा, अंतर नहीं पड़ा। ये परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा एवं ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा, उसका उत्तर आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र प्रवास करना एक दार्शनिक अपराध होगा। क्योंकि भिन्न सत्ता वस्तुओं में कारण का यह भाव कभी भी घटित नहीं होता। जो भिन्न सत्ता है जड़ और चेतन, अब इसमें कार्य कारण भाव कभी घटित नहीं होता, तो उनका कारण अज्ञान का कारण यदि जड़ पदार्थ को खोजा जाए, कर्म को देखा जाए, तो एक दार्शनिक अपराध होगा। मैंने तत्व के दर्शन को उसने समझा नहीं, वस्तु व्यवस्था को उन्होंने समझा नहीं, उसलिए कारण कार्य कर्म पर में खोजते रहता है, दोषारोपण पर में करते रहता है। और जबकि व्यवस्था यह है कि भिन्न सत्ता वस्तु में कारण कार्य भाव कभी भी घटित नहीं होता, अतः उसका उत्तर स्वयं आत्मा में ही निहित है, गर्भित है। पूर्व यह है कि आत्मा ने सदा से स्वतः ही यह अज्ञान परिणाम किया और यह स्वयं ही अज्ञानी रहा। स्वयं ने अज्ञान परिणाम किया और स्वयं अज्ञानी रहा। अब अज्ञान परिणाम माने क्या? अपने को ज्ञायक नहीं जाना, अपने को ज्ञायक नहीं माना। अब जब जाना और माना नहीं तो दीनता की बात खड़ी नहीं होती। फिर बाबू की एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक लौकिक प्रश्न है कि महान बलशाली पराक्रमी एवं अतुल वैभव संपन्न एक सम्राट की महारानी दरिद्री महावत पर मुग्ध क्यों हो गए। उसका कारण है कि हम महावत को माने तो सम्राट तो उससे कहीं बहुत अधिक है, फिर महावत का मुंह कैसा। अतः पूर्ण अनुसंधान के बाद हमारा अंतिम समाधान यही होगा कि यह तो महारानी की अपनी स्वाधीन परिणति ही है, इसके मनोविकार का कारण भी अत्यंत पर निरपेक्ष ही है। कथन में कर्मोदय आदि की सापेक्षता आ जाती है किंतु भाव तो निरपेक्ष ही रहता है। कथन में कुछ भी आ जाए व्यवस्था ऐसी नहीं होती, व्यवस्था तो निरपेक्ष ही रहती है। क्योंकि यदि कोई दूसरा आत्मा को अज्ञानी बनावे तो कोई ज्ञानी भी बना सकेगा और पुनः कोई अज्ञानी बना देगा, तो किसी के हाथ की कठपुतली रह जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा किसी के हाथ की कठपुतली मात्र रह जाएगा और उसके बंद मुख के सभी अधिकार छीन जाएंगे और यह तो एक मखोल ही होगा, यह एक मजाक ही होगा। फिर एक प्रश्न यह है कि इतने लंबे एवं जटिल अज्ञान का अंत कैसे हो। तो ठीक है, चलिए भाई, अपना दोष था, अपना अज्ञान था, अपने स्वभाव की ओर नहीं देखा, नहीं जाता, अपने में असमत्व नहीं किया, एकत्व को नहीं किया, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ये इतने लंबे और जटिल अनंत काल से चलता आया ये अज्ञान का अंत कैसे हो। तो यह प्रश्न स्वयं ही अपना उत्तर है। अज्ञान का अंत कैसे हो, ज्ञान में इस सबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्राणातक है। कि अज्ञान का स्वरूप जिसे विदित हुआ, क्योंकि अनादिकाल से अज्ञान चला आ रहा, तो अज्ञान क्या तो विदित हो गया कि अपने को नहीं जाना, ध्रुव आत्मा को चैतन्य सत्ता को पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध नहीं जाना नहीं माना, ये उसका अज्ञान था। तो अज्ञान नहीं था, ज्ञान का जन्म हुआ, तो ज्ञान ने अज्ञान का स्वरूप जान लिया, कैसा अज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है। अब ये प्रश्न जहाँ पे उठा है वहां पे ये भी उसका प्राण का अंत, अज्ञान से प्राण का अंत होने का शुरुआत हो गई। प्रबल विचार का उत्पाद ही अज्ञान का प्राणातक है, क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसा समस्त विचार होता ही नहीं है। जहाँ पे प्रबल अज्ञान हो यहाँ पे ऐसा समस्त विचार के अज्ञान का अंत कैसे हो, यह विचार का जन्म ही नहीं होता। अनादि अज्ञान के प्रभाव में शुद्ध आत्म अनुभूति संपन्न किन्हीं ज्ञानी सत्पुरुष का सहयोग मिलने पर जो महान उद्यमशील आत्मा उनकी कल्याणी वाणी को हृदयगम करता है, उनका अनादि का अज्ञान शिथिल होकर इस समझ विचार में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी गुरु के सहयोग एवं उनकी वाणी मात्र से यह नहीं होता, वरन गुरु की वाणी का मर्म जिसे अपने ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ है उसे यह विशुद्ध चिंतन धारा प्रारंभ होती है। किसको होती है? गुरु की वाणी का मर्म, बस यही का मर्म है। गुरु की वाणी तो सुन लेता है, वो वाणी मात्र से यह नहीं होता। देखिए, यानी गुरु के सुयोग है वो उसकी वाणी मात्र से नहीं होता, वरन गुरु की वाणी का मर्म जिसे अपने ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ है, गुरु का सुयोग मिला और उसकी वाणी सुनने उससे काम नहीं बनेगा, लेकिन वाणी का मर्म गुरुदेव का हृदय जिसके हृदय में बच गया, जिसके ज्ञान में प्रतिभाषित हो गया, उसे यह विशुद्ध चिंतन धारा प्रारंभ होती है। एक प्रश्न और हो सकता है कि अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं है, वो यह सब कैसे करता होगा? तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान का अभाव है। ये बात अच्छी तरह से समझे कि प्रत्येक समय उत्पन्न होता हुआ जो उपयोग है, जो उत्पाद दे वाला उपयोग है, उस उपयोग के अंदर में एक सामान्य उपयोग का जन्म होता है। जिस सामान्य उपयोग के अंदर में भगवान आत्मा आवाज गोपाल सभी को सदाकाल जानने में आता है, तो प्रति समय उत्पाद ज्ञान का होता है, न सम्यक ज्ञान का होता है, न मिथ्या ज्ञान का होता है, सामान्य ज्ञान का जन्म होता है। और सामान्य ज्ञान जिस तरफ झुकता है, चाहे को तरफ झुके तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और पर तरफ झुके तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, लेकिन उत्पन्न होता है ज्ञान। तो सबके पास में ज्ञान है और प्रति समय ज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान का जन्म नहीं होता, मिथ्या ज्ञान का जन्म नहीं होता, प्रत्येक समय ज्ञान का जन्म होता है। और जिसको विषय करे, चाहे स्व या पर, स्व को विषय करे तो समय ज्ञान कहलाता है और पर को विषय करे तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि तो ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान का अभाव है, अज्ञानी के पास ज्ञान तो बहुत है। किंतु पर सत्ता चित्त के कारण, पर सत्ता की आसक्ति के कारण उसके ज्ञान का सूक्ष्म की सूक्ष्म व्यवसाय भी पर में ही होता है। ज्ञान तो उसके पास भी बहुत है, अज्ञानी के पास भी ज्ञान का उत्पाद होता है, अज्ञान का उत्पाद नहीं होता। अब ज्ञान जिस तरह मुड़ता है, जिसको विषय बनाता है, तो विषय भेद से सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का नाम को पाता है। तो सबके पास में ज्ञान है और ज्ञान का जन्म होता है। अब उसकी वृत्ति के अंदर में क्या है, उसकी मान्यता के अंदर में क्या है, उसकी समझ के अंदर में क्या है, उसके विश्वास के अंदर में क्या है, उसके अभिप्राय के अंदर में क्या है, उसके मुताबिक पर्याय अपनी योग्यता के मुताबिक स्व और पर तरफ झुकती हुई, स्व या पर को विषय बनाती हुई, चाहे सम्यक ज्ञान रूप परिणाम की है, चाहे मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम। इसलिए कहते हैं कि सूक्ष्म भी सूक्ष्म व्यवसाय भी पर में ही होता है। किंतु यही ज्ञान सदगुरु भगवंत से आनंद निकेतन स्वसत्ता की महिमा सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय करके सम्यक ज्ञान में परिणमित हो जाता है, परिणत हो जाता है। कितनी बार जो उत्पन्न होता हुआ ज्ञान है वो सद्गुरु भगवंत से, सद्गुरु मात्र नहीं, सद्गुरु भगवंत से आनंद निकेतन, आनंद का जो धाम है, आनंद की जो मूर्ति है, ऐसी स्वसत्ता की महिमा सुनकर उसमें बात नहीं आई कि स्वसत्ता और परसत्ता दोनों को सुनकर स्वसत्ता की महिमा सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय करके सारी शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, उग्र व्यवसाय करके सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाता है और अतिंद्रिय आनंद का भजन करने लगता है। देखिए करना क्या है, स्वभाव की महिमा सुनी और सुनकर उसके प्रति उग्र व्यवसाय हुआ, यानी उसकी महिमा आई, उसका अहोभाव आया, तो सम्यक ज्ञान के जन्म। कोई लंबी चोरी वार्ता नहीं है, कुछ नहीं, उसने मान रखा है कि कठिन है, बाबू जी कहेंगे उसकी कठिन मानना ही कठिन है। अज्ञानी के ज्ञान का यह यज्ञात्मक प्रश्न कि अज्ञान का अंत कैसे हो, अज्ञानी के ज्ञान का यह यज्ञात्मक प्रश्न कि अज्ञान का अंत कैसे हो, अज्ञान का अंत कैसे हो, ये प्रश्न कहाँ होता है, ज्ञान में होता है अज्ञान में नहीं होता, कि ज्ञान ने अज्ञान का स्वरूप जान लिया, ज्ञान ने क्या जाना कि मैंने अपने में अपनापन नहीं किया, मैंने जायज को अपना नहीं जाना, जायज को अपना नहीं माना, ये मेरा अज्ञान था, तो ये मेरा अज्ञान का ऐसा ज्ञान नहीं जाना, तो ज्ञान का ये प्रश्न कि अज्ञान का अंत कैसे हो, ये अज्ञान को एक खुली चुनौती है। इस प्रश्न में अज्ञानी को अज्ञान का स्वरूप विदित हो चुका है, विदित हो चुका है कि अज्ञान का स्वरूप क्या है, देखिए उसने पर को जाना, पर को तो जाना ही नहीं कहते गुरुदेव, जान सकता ही नहीं, अपने ज्ञान के अंदर में क्या होता है, मानता है कि पर को जाना, पर को तो जान ही नहीं सकता, जीव का ज्ञान होता ही नहीं है, ये की सापेक्षता में ज्ञाकार कहा गया, लेकिन ज्ञान ज्ञाकार होता ही नहीं, ज्ञान का स्वरूप तो समझता है ना, ज्ञान किसको, ज्ञान की व्यवस्था क्या है, ज्ञान का स्वभाव क्या है, ज्ञान के अंदर में जो कुछ भी रचना रची गई तो ज्ञान की रचना है, जो की रचना है, जब ज्ञान की रचना है तो ज्ञानकार है, ज्ञाकार कहा है, ध्येय की सापेक्षता में निमित्त में बाहर में संयोग में उदय में क्या है उसको बतलाने के लिए ज्ञाकार कहा गया, लेकिन वो है नहीं ज्ञाकार, है तो ज्ञानाकार, और सही में देखा जाए तो ज्ञान का ज्ञानाकार भी नहीं होता, ज्ञान होता है, और ज्ञान तो आत्मा है, तो ज्ञान नहीं होता, आत्मा होता है, अब उस ज्ञान ने आत्मा को नहीं जाना, इसका नाम अज्ञान है। अब ऐसा ज्ञान से उदित हो चुका है कि मेरे में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, ये मेरे ज्ञेय नहीं है, लोग मेरा ज्ञेय नहीं है, और अंदर भी जाता है तो कहता ज्ञाय मेरा ज्ञेय नहीं है, जब तक ज्ञान उसको ज्ञेय दिखेगा तब तक ज्ञान ज्ञेय का संकट दो खड़ा रहेगा, ज्ञाय मेरा ज्ञेय तो ज्ञेय दूसरा रह गया और जानने वाला दूसरा रह गया, तो बैठा पर्याय में तो द्रव्य का ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान को आत्मा, ज्ञान को आत्मा, तो उस ज्ञान के अंदर में ज्ञान भूल नहीं दिखता, तो ज्ञान के अंदर में अभेद आत्मा दिखता है, जहाँ अभेद आत्मा दिखा तो ज्ञान में विदित हो गया, कहो इस आत्मा को मैंने अपना नहीं जाना, तो क्या होता है, उग्र व्यवसाय होता है स्वभाव की तरफ, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य तत्व, मैं परिक्रांति शुद्ध तत्व, ये बात कहते हैं, स्वरूप विदित हो चुका है, अब वह समझने लगा है कि मेरी चैतन्य सत्ता को अनादि अनंत पूर्ण ध्रुव अक्षयानंद स्वरूप एवं सर्व संबंध विहीन है, और मेरी ही दृष्टि में उसे नफरत, अपूर्ण, दुखी, अज्ञानी एवं पराजित कल्पित किया है। इस बात को समझ लिया कि मेरी जो चैतन्य सत्ता है वो अनादिरंत है, पूर्ण है, ध्रुव है, अक्षयानंद स्वरूप है एवं सर्व संबंध भी नास्ति सर्व की संबंध, उसके अंदर में कौन कौन से संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं, कारण कार्य संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं और ज्ञाता ज्ञेय संबंध नहीं, किसी प्रकार का संबंध, चारों संबंध में से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, सर्व संबंध विहीन है ना, सर्व संबंध विहीन है, सर्व संबंध ये बहुत मुख्य बात है, अभूतपूर्व बात है, सर्व संबंध विहीन। इसे कर्ता कर्म में कारण कार्य तो है, कारण कार्य में ज्ञाता ज्ञेय तो है, ये सारे के सारे उलझने वाले संबंधों की चर्चा है। गुरुदेव प्रिया कहा करते थे कि हम जब अपने अंदर में जाते हैं तो हमें हमारी पर्याय नहीं दिखती, हमारा द्रव्य दिखता है, और जब बाहर आते हैं तो आपकी पर्याय नहीं दिखती, आपका द्रव्य दिखता है। तो एक वस्तु के वैभव को देखने का जो विधान जो है तो इतना अलौकिक है, इतना अद्भुत है कि जिसके अंदर में उपादान 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 के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ निमित्त की ओर देखे तो निमित्तिक भाव का जन्म होने, पर निमित्तिक भाव हो तो उसका निमित्त नाम पड़े न। भगवान की ओर देखे तो भगवान की भक्ति का राग हो तो उस राग को निमित्तिक भाव कहकर भगवान को निमित्त कहा गया, लेकिन अब निमित्त निमित्तिक संबंध ही नहीं रहा। तो ये कहते हैं सर्व संबंध विहीन है और मेरी ही वृत्ति है उसे नश्वर, अपूर्ण, दुखी, अज्ञानी एवं पराजित कल्पित किया है। यही मेरा अज्ञान था और अज्ञान आत्मा की पर्याय होने पर भी झूठा होने से कभी भी अनुशीलन के योग्य अर्थात श्रद्धेय नहीं है, क्योंकि अज्ञान के अनुशीलन में कभी भी सही आत्म सत्ता की उपलब्धि नहीं हो सकती। सीधी सी बात है। इस प्रकार अज्ञान को वह स्वसत्ता विरोधी एवं नितांत नित्य मानकर अज्ञान एवं अज्ञान के प्रादुर्भूत पर सत्तावलंबी पुण्य एवं पाप की वृत्तियों एवं अनंत पर सत्ताओं से एकत्व तोड़ता हुआ, किससे किससे एकत्व तोड़ता हुआ, स्वसत्ता विरोधी, सबसे पहली बात तो यह स्वसत्ता विरोधी नितांत नित्य मानकर अज्ञान एवं अज्ञान से प्रादुर्भूत पर सत्तावलंबी पुण्य पाप की वृत्तियां, पुण्य पाप की वृत्तियां पर सत्तावलंबी होती है और अनंत पर सत्ताओं से एकत्व तोड़ता हुआ एवं समर्थ भेद ज्ञान के बल से स्वसत्ता में ही एकत्व एवं अहम की स्थापना करता हुआ अपने अविराम चिंतन द्वारा जब महामहिम आनंद निकेतन निज चैतन्य सत्ता में ही अलग जगाता है तो सदा से पुण्य पाप जैसी पर सत्ताओं में पड़ा श्रद्धा का आम कंपित एवं विरोधित होकर स्खलन को प्राप्त होता है। करना क्या होगा, समर्थ भेद ज्ञान के बल से स्वसत्ता में ही एकत्व एवं अहम की स्थापना, भेद ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर में भेदों का ज्ञान न हो, जिसके अंदर में अभेद का ज्ञान हो, स्वाभाविक अभेद ऐसा अपना जो परमात्म तत्व है ना, ठीक है ना, कहा स्वसत्ता में ही एकत्व है। अब स्वसत्ता में एकत्व माने क्या, अभेद का ज्ञान, जो त्रिकाली अनादि अनंत स्वाभाविक अभेद है उसमें एकत्व एवं अहम की स्थापना करता हुआ अपने अविराम चिंतन द्वारा जब महामहिम आनंद निकेतन नित्य चैतन्य सत्ता में ही अलग जगाता है तो सदा से पुण्य पाप जैसी पर सत्ता हो मैं परा श्रद्धा का अहम कंपित एवं विदोलित होकर स्खलन को प्राप्त होता है और लौट कर अपनी ध्रुव अक्षय सत्ता में ही अहम सिद्ध होता है। वहाँ से लौट जाता पर सत्ता से और स्वसत्ता जो है अपनी ध्रुव अक्षय सत्ता जो है चैतन्य परिपूर्ण सत्ता जो है उसके अंदर में अहम सिद्ध होता है। स्वरूप के अहम में धारावाहिक सक्रिय इस गौरवमय वृत्ति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। गौरव में गाथा है अपने स्वभाव की विधान है वस्तु में कैसे प्रसरित होना कैसे जम जाना कैसे रम जाना उसका जो विधान है सरलतम विधान सुंदरतम विधान गौरवमय विधान कितने सरल शब्दों में कितनी सरल भाषा के अंदर में अपनी स्वसत्ता में अहम करता हुआ महामहिम पदार्थ आनंद निकेतन से अलग जगाता हुआ धुन जगाता हुआ हस्ती की मस्ती में मस्त रहता हुआ स्वरूप के अहम में धारावी सक्रिय इस गौरवमय व्यक्ति को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन के प्राप्त करने की विधि अज्ञान का नाश कैसे हो ऐसा जो प्रश्न उठा वह ज्ञान का ही स्वरूप जिसने अज्ञान का स्वरूप जान लिया और ज्ञान ने सही रास्ता जानकर अपने स्वभाव की व्यवस्था को समझकर उसके अंदर में अहम करता हुआ पर सत्ता से वापिस आता हुआ उसको स्खलन को प्राप्त होता हुआ गौरव में इसको सत्ता के अंदर में लीन होता हुआ जो परिणाम का जन्म होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन सहज मात्र में उत्पन्न होता है उसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता स्वभाव की महिमा में स्वभाव की गौरव गाथा में ये सहज मात्र में उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन सहज मात्र में ही सबके परिणाम में उत्पन्न हो इसी मंगल भावना के साथ में।